हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 19 श्लोक संख्या 9, 10 एंड 11। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपक याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम् अत्यैव मे विशतो मानसराज हंसा, प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्ते, कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्था। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय, तत्थाम वृंदावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु, वर्गेनया कल्पिता श्रीमद्भागवतम् प्रमाणममालम्, प्रेम पुमर्थो श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं, तत्राधरो न पर वंशी विभूषित करा नवनीरधाभा, पीतांबर धरुण बिंब फल धरोष्ठा, पूर्णेन्द्र सुंदर मुखात अरविंद नेत्रा, कृष्णात परम किमपि तत्व अहम् न जाने, ब्रजे वसंतम् नवनीत चोरम् गोपांगनानां चदुकूल चोरम् श्रीराधिकाय हृदयस्य चोरम् अनेकजन्म जितपापचोरम्
चोराग्यगण्यं पुरुषं नमामि श्रीकृष्णश्यामं मनसास्मरामि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णम् भक्तरूपस्वरूपकम् भक्तावतारभक्ताख्यम् नमामि भक्तशक्तिकम् जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। अध्याय 19 प्रथम स्कंद अध्याय 19 श्लोक संख्या 9, 10 एंड 11। जैसे कि हमने कल देखा कि महाराज परीक्षित को पता चल गया कि अभी उनको श्राप मिल गया है और उन्होंने सारा अपना राज्य अपने पुत्रों को दे दिया और स्वयं आकर गंगा जी के तट पर आमरण अनशन उपवास रखा कि अभी ना मैं कुछ खाऊंगा और ना ही कुछ पीऊंगा, केवल अपने भगवत प्राप्ति के लिए कुछ साधन करूंगा। तो यहाँ पर जैसे ही सारे संसार को पता चल गया, फौरन से सारी जगहों से बहुत सारे ऋषि वहां पर आने लगे। सारे जितने भी ऋषिगण थे बहुत सारे वहां पर जमा थे और बहुत सारे आने लगे। बहुत सारे ऋषि जो कि बहुत ही पहुंचे हुए प्रसिद्ध ऋषि हैं, जिनके नाम यहाँ पर हमें सूत गोस्वामी बता रहे हैं। केवल इन ऋषियों के नाम श्रवण करने से ही पवित्रता उत्पन्न होती है। इतने बहुत ही पहुंचे हुए ऋषिगण यहाँ पर आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर भगवत कथा होने वाली है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस समय लोग जो है वो भगवत कथा की महत्ता को नहीं जानते कि कितना महत्वपूर्ण कार्य है श्रीमद् भागवतम को पढ़ना या भागवतम को श्रवण करना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जब भागवत कथा होती है तब 2, 4, 6, 8, 10 लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पर सारे ऋषिगण अपने समस्त शिष्यों के साथ आ रहे हैं। उनके ऐसा नहीं कि वो एक एक ऋषि के साथ 2-4 उनके शिष्य होंगे आगे पीछे तो वो चल नहीं, एक एक ऋषि के साथ 10-10, 20-20 हजार शिष्य आए हैं और वो सब यहाँ पर कथा के महत्व को जानते हैं, इसलिए आए क्योंकि जानते हैं कि कथा श्रवण करने से ही हम अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। तो फिर कौन कौन से ऋषि यहाँ पर आए हैं उनके विषय में कहते हैं श्लोक नंबर 9 में, अत्रेर विशिष्ट श्रवण शरत्वान अरिष्टनेमिर भृगुरंगिराश्च पराशरोगादिसुतोऽथ राम उतथ्य इन्द्र प्रमदेत्मबाहो मेधातिथिर्देवल आष्टिषेणो भारत वाजो गौतम पेपलाद मैत्रेय और्व कवश कुंभयोने द्वैपायनो भगवान नारदश्च अत्रिर्विशिष्टश्च चवन शरत्वा। अरिष्ट निमिर भृगुरंगिराश पराशरोगाधिसुतोथराम उतत्य इंद्र प्रमदित्म बाहो मेधातिथि देवल आष्ट्रिशेणो भारत वाजो गौतम पेपलाद मैत्रेय और वह कवश कुंभयोनि द्वैपायनो भगवान नारदश। शब्दार्थ में बताया श्रील प्रभुपाद ने अत्रि से नारद सभी विभिन्न साधु पुरुषों के नाम हैं जो विश्व के विभिन्न भागों से यहाँ पर आए थे, यानी कि ये सारे बहुत ही प्रसिद्ध ब्राह्मणों के नाम हैं। और अनुवाद देखिए, ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से बड़े बड़े मुनि आए थे, यथा अत्रि, श्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमी, भृगु, वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र, अंगिरा, परशुराम, अतिथ्य, इंद्र प्रमद, इद्मभाहो, मेधातिथि, देवल, अरिष्टशेण, भारद्वाज, गौतम, पिप्पलात, मैत्रेय, आर्वह, कवशः, कुंभयोनि, द्वैपायन तथा महापुरुष नारद। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में प्रत्येक ऋषि के विषय में बहुत ही विस्तार से बता रहे हैं, तो हम श्लोक के साथ जाएंगे। पहले है अत्रि विशिष्टश चवन शरद्वाद। सबसे पहले अत्रि, अत्रि ऋषि के विषय में हम सब जानते हैं कि वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और देवी अनुसुईया के पति। इनकी पत्नी अनुसुईया बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी और एक बार ब्रह्मा, विष्णु, महेश उनके पातिव्रत्य के परीक्षा लेने के लिए उनके यहाँ पर आए थे और ब्रह्मा, विष्णु, महेश के अंश से उनको तीन पुत्र प्राप्त हुए थे। ब्रह्मा जी के अंश से सोम, शिव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि और विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय, उनको तीन पुत्र प्राप्त हुए थे। बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि हैं। मतलब युधिष्ठिर महाराज ने जब राजसूय यज्ञ किया था उस समय भी वे वहां पर मौजूद थे और जब पृथु महाराज अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और इंद्र बार बार उनका घोड़ा चोरी करके लेके जा रहा था तब भी वो वहां पर थे और इंद्र को चोरी करता हुआ घोड़ा जब उन्होंने देखा था तो अत्रि मुनि ही महाराज पृथु को बता रहे थे कि इंद्र कर रहा है। और जब जन्मंजय यानी जब फिर से परीक्षित महाराज की मृत्यु के बाद जन्मंजय उनके पुत्र ने जो सर्प विनाशक यज्ञ किया था उसमें भी ये थे, तो ये बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि हैं। वे यहाँ पर आए हैं कथा सुनने के लिए। उसके बाद अत्रि विशिष्ट, विशिष्ट मुनि वो भी ब्रह्मा के पुत्र हैं और पहले वो ब्रह्मा जी के पुत्र ही थे लेकिन बाद में उर्वशी और मृत्रा वरुण के अंश से वो पैदा हुए थे। बड़े बड़े राजाओं के कुल पुरोहित थे, रघुवंश में श्री राम जी के कुल पुरोहित। ये ब्राह्मणों का जब नाम आता है तो सब में से फर्स्ट नंबर पर विशिष्ट जी का नाम आता है, यानी जो ब्राह्मणों के गुणों से विभूषित हैं। ये अपने शत्रुओं की भी प्रशंसा करते हैं। ये जो इनके विश्वामित्र के साथ इनका कुछ झगड़ा था, विश्वामित्र की बहुत इच्छा थी कि वो ब्राह्मण कहलाए जाएं और सारे ब्राह्मणों को वो धमका के कहते थे कि मैं ब्राह्मण हूं मुझे। हालांकि विश्वामित्र जो थे वो गादी सुतो पर उनके राजा, उनके पिता राजा थे तो ये क्षत्रिय थे, लेकिन उनको एक बार विश्वामित्र जब विशिष्ट मुनि के आश्रम में गए तो वहां पर नंदिनी गांव को देखा तो नंदिनी गांव वो चाहते थे कि हमारे पास होनी चाहिए तो लेके जाना चाह रहे थे, लेकिन विशिष्ट मुनि के पास इतना ब्रह्म तेज था कि उन्होंने विश्वामित्र और उनकी सारी जो सेना थी उसको हरा दिया। तो इसके लिए उनको ऐसा लगा कि ब्राह्मणों के पास बहुत तेज होता है, मैं भी ऐसी तपस्या करूंगा ब्राह्मण बन जाऊंगा। तो उन्होंने बहुत तपस्या की, बहुत तपस्या करने के बाद वो खुद को ब्राह्मण कहलाना चाहते थे, लेकिन सारे ब्राह्मण उनको बोलते थे कि अगर विश्वामित्र ने आपको ब्राह्मण स्वीकार कर लिया तो हम भी आपको ब्राह्मण स्वीकार करेंगे, अगर विशिष्ट मुनि अगर आपको है ना ब्राह्मण स्वीकार कर, तो विशिष्ट मुनि स्वीकार करते नहीं थे। वो कहते थे कि नहीं, आपके अंदर क्रोध है, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा क्रोध था, झगड़ा करते थे। 21 बार उन्होंने संपूर्ण क्षत्रियों का वध किया था, और उसके अलावा भी विशिष्ट मुनि के पुत्रों का भी वध किया था, 100 पुत्रों को मार दिया था। वैसे विश्वामित्र की तपस्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो मानते नहीं थे विशिष्ट मुनि के ये ब्राह्मण हैं, क्योंकि ब्राह्मण के अंदर स्वभावतः विनम्रता होनी चाहिए, शांति प्रियता होनी चाहिए। तो इसलिए वो मानते ही नहीं थे कि विश्वामित्र जी ब्राह्मण हैं। तो एक बार एक दिन विश्वामित्र ने सोचा, सिर्फ विशिष्ट ही मेरे ब्राह्मण पद के अंदर एक रुकावट है, अगर ये विशिष्ट मुनि मर जाएगा ना तो सारे ब्राह्मण तो मेरी बात मानेंगे और मुझे ब्राह्मण बोलेंगे। तो उसने क्या किया, तलवार लेकर उसकी कुटिया के बाहर खड़े हो गए कि जैसे ही विशिष्ट मुनि बाहर आएंगे तो उनको मैं तलवार से मार डालूंगा। अंदर कुटिया के अंदर विशिष्ट मुनि अपनी पत्नी अरुंधति के साथ बैठे हुए थे। तो बहुत ही सुंदर रात्रि का समय था, चंद्रमा आकाश पर बहुत ही सुंदर लग रहा था, चंद्रमा पूर्णिमा की रात थी। पूर्ण चंद्रमा को देखकर अरुंधति अपनी पत्नी को बोलने लगी कि पतिदेव, ये पूर्णिमा का चंद्रमा कितना सुंदर लग रहा है, इसका प्रकाश कितना सुंदर लग रहा है, चारों ओर इसका प्रकाश कैसे सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है पूरा वातावरण बहुत दिव्य लग रहा है इसकी प्रकाश के कारण। तब वशिष्ठ मुनि ने अपनी पत्नी को कहा कि जैसे पूर्णिमा की रात का चंद्रमा संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर रहा है, वैसे ही विश्वामित्र की तपस्या संपूर्ण विश्व का कलमश दूर कर रही है। मतलब उनकी तपस्या का इतना तेज है कि पूरा संसार उससे पवित्र हो रहा है। तो अभी ये विशिष्ट मुनि है जो अपनी पत्नी से अकेले में बैठकर अपने शत्रु की प्रशंसा कर रहे हैं। तो ये वास्तव में शुद्ध ब्राह्मण, शुद्ध जीवों का लक्षण है कि वो कभी किसी की निंदा नहीं, हर किसी के अंदर कोई ना कोई गुण देखना, यही वास्तव में भक्त का कर्तव्य है। भक्त का यह लक्षण होना चाहिए कि किस तरह से हर किसी में गुण देखे। तो विश्वामित्र के अंदर ये गुण देखकर वो अकेले में अपनी पत्नी के साथ किस तरह से उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, ये जब सुना, विश्वामित्र बाहर खड़े थे और सुन रहे थे कि विशिष्ट मुनि जो है वो उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो अंदर आके वो वशिष्ठ मुनि के चरणों में गिर गए और रोने लगे कि आप वाकई में मैं ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं हूँ, आप मुझे अब पता चला ब्राह्मण के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, मैं सदैव आपको मारने के लिए इच्छुक होता था और आप मेरे विषय में ऐसे बात कर रहे हो कि मतलब मेरी तपस्या की इतनी प्रशंसा कर रहे हो। तो वशिष्ठ मुनि ने उसी टाइम पे कहा, उठिए ब्रह्म ऋषि, उठिए, यानी कि अब आप ब्राह्मण बन गए हो, एक्सेप्ट कर दिया उस टाइम पर कि वास्तव में ब्राह्मण का लक्ष्य होता है विनम्रता, दया भाव, ये शांति प्रियता, ये विनम्रता। आप तो पहले सदैव झगड़े की बातें करते थे, इसलिए मेरा मन नहीं करता था आपको ब्राह्मण खिलाने का, लेकिन आज से आप ब्राह्मण बन गए। तो ये ऐसे बताया। अत्रि विशिष्ट चवन, चवन मुनि के बारे में श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि ये महामुनि थे तथा भृगु मुनि के पुत्र में से थे। ये समय से पूर्व जब उनकी गर्भिणी माता का अपहरण हुआ था उत्पन्न हुए थे। चवन अपने पिता के 6 पुत्रों में से एक थे। ये जो चवन ऋषि थे उनका विवाह महाराज श्रीयाति की पुत्री सुकन्या से हुआ था, और विवाह कब हुआ था, जब वो बहुत बूढ़े हो गए थे, बहुत बूढ़े वृद्ध हो गए थे। तो महाराज सुकन्या के पास उनके महाराज श्रेयाति के पास गए और उनकी सुकन्या पुत्री का उन्होंने वरन मांगा। उन्होंने बोला मैं इससे विवाह करना, तो महाराज जो है वो ब्राह्मण को मना नहीं कर सके, लेकिन उनकी पुत्री बहुत ही युवती थी, अभी बहुत छोटी सी थी, और इनका विवाह जब इतने बूढ़े ऋषि के साथ कर दिया, क्योंकि महाराज जो है वो ब्राह्मण को मना नहीं करना, वो चाहते थे, वो कह रहे थे दान में मुझे आपकी पुत्री चाहिए। तो फिर जब विवाह करने के बाद उन्होंने देखा कि मैं कितना बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी इतनी जवान है, तो वो अश्वनी कुमारों के पास गए, क्योंकि अश्वनी कुमार जो थे वो वेद हैं, जैसे देवताओं के वेद होते हैं, चिकित्सक डॉक्टर्स हैं। तो देवता जो इंद्र जो है ना, जब भी भोजन करते थे देवता, तो अश्वनी कुमारों को वहां पर बैठने की अनुमति नहीं देते थे, क्योंकि वो बोलते थे कि ये तो डॉक्टर हैं, वेद का काम करते, तो ये बहुत हीन कार्य है। डॉक्टर का काम जो होता है वो बहुत गंदा होता है, डॉक्टर फोड़े पे फुंसी पे हाथ लगाते हैं और उसको साफ करते हैं, और इस तरह से मतलब वो बहुत हीन देवता जो है वो पवित्र रहते हैं। तो फिर है ना उनको है ना अपने साथ बैठ कर खाना खिलाते ही नहीं थे। इंद्र जो है वो अश्वनी कुमारों को देवताओं के साथ भोजन करने की परमिशन नहीं देते थे। लेकिन श्यवन ऋषि ने क्या किया था, अपनी तपस्या के बल पे इंद्र को हरा के अश्वनी कुमारों को देवताओं के साथ भोजन करने का अधिकार प्रदान किया था। तो जब श्यवन ऋषि के आशीर्वाद से वो लोग, वो दोनों जो अश्विनी कुमार दोनों भाई थे, उनको यह अधिकार मिल गया कि वो देवताओं के साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं, तो वो कृतज्ञ थे। अब उनके पास भी बहुत शक्ति थी, देवताओं के डॉक्टर थे। उन्होंने क्या किया, ऋषि श्यवन ऋषि ने जाके उनको बोला कि मेरा विवाह हो गया, मैं बहुत बूढ़ा हूं, अभी मैं जवान बनना चाहता हूं। तो अश्विनी कुमारों ने उनके लिए एक पराश बनाया, पराश होता है ना जो खाते हैं, तो वो पराश खाने के बाद जड़ी बूटियों को मिलाकर उसको जब सेवन किया, खाया, तो ये श्यवन ऋषि जो है ना बिल्कुल जवान हो गए, एकदम इतने जवान हो गए कि पहचान ही नहीं जाते थे, एकदम जवान। इसीलिए अभी जो भी पराश खाते हैं ना उसको बोलते च्यवन पराश, ये च्यवन पराश खाने से जवान होते। मतलब उन्होंने जो बनाया था वो तो ऐसी बात है, देवताओं के डॉक्टर से, तो उनके पास इतनी शक्ति थी, तो इतना जवान हो गए थे कि एक बार जब राजा महाराज श्रेयाति जब अपनी पुत्री के साथ मिलने के लिए आए, तो उन्होंने देखा कि मेरी पुत्री जो है वो अपने कक्ष में बैठी हुई है और उनके साथ एक नौजवान युवक बैठा हुआ है। जब महाराज श्रेयाति ने देखा तो उनको बहुत ज्यादा दुख हुआ और है ना अपनी पुत्री को जाके खींच के बाहर लेके आए और बोला निर्लज तुमको शर्म नहीं आती है अपने इतने तेजस्वी पति को छोड़कर तुमने उनके साथ इतना विश्वासघात किया है, तुम एक किसी पर पुरुष के साथ संबंध जोड़कर यहाँ पर बैठी हुई हो, तुमने अपने पिता का कुल का कुल को है ना सर्वनाश करने वाली हो, तुम अपने पति के कुल का सर्वनाश करने वाली हो, तुमको जरा भी लज्जा नहीं आई ऐसी हरकत करते हुए, बोले जा रहे हैं। तो उनकी जो पुत्री थी सुकन्या, उनको हंसी आ रही थी और ये पिताजी जो है ना वो उनको मतलब सोच भी नहीं सकते थे कि ये कोई है ना च्यवन ऋषि हो सकते हैं। फिर वापस बाद में बोला पिताजी मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात जैसे तैसे करके वो शांत किया उनको और फिर बताया कि ये आपके दामाद ही हैं, ये वही हैं अश्विनी कुमारों ने इनको जवान कर दिया। फिर जब उनको पूरी कथा सुनाई और च्यवन ऋषि ने भी स्वीकार किया कि हाँ मैं आपकी पुत्री का पति हूँ, ये मेरी पत्नी है, तो फिर उनको लगा कि हाँ, फिर बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत अपनी पुत्री को आलिंगन किया, प्रेम किया। तो ये च्यवन ऋषि के विषय में, इतने इतने महान ऋषि यहाँ पर पधार रहे हैं जिनको ऐसा नहीं है कि उनको अपना कोई काम नहीं। आज बोलते हैं ना सब लोग कि हमारे पास समय नहीं है, हम बहुत बिजी हैं, ये काम है वो काम है। आजकल के लोगों से 100 गुना ज्यादा इंगेज रहे हैं ये ऋषि। ये आजकल के लोग तो सिर्फ आहार निद्रा भाई मैथुन में ही अपने समय को व्यतीत करते रहते हैं, लेकिन ये जो ऋषिगण होते हैं इनका काम तो संसार के कल्याण के लिए भगवत भक्ति का प्रचार करना, कथा कीर्तन करना। तो ये सब अपनी काम, ये सारे कर्तव्यों को साइड में रख के यहाँ पर आए हैं, उनकी लालसा क्या है? कथा श्रवण करना। ये सारे जो यहाँ पर ऋषि आए हैं वो यहाँ पर कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। आगे है, अति विशिष्ट श्रवण श्रद्धा। श्रद्धान जो है वो कृपाचार्य है, जिसे हमको पता है कृपाचार्य, जो कृपी और कृपा, ये दो जो द्रोणाचार्य की पत्नी के भाई थे, सॉरी हाँ, और हस्तिनापुर के कुल पुरोहित थे कृपाचार्य, उनको शारदा बोलते हैं। उसके बाद है अरिष्टनेमी, उसके बाद है भृगुऋषि। भृगुऋषि के विषय में श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब ब्रह्मा जी वरुण की ओर से महान यज्ञ कर रहे थे तो महर्षि भृगु यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुए थे। ये यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न वाले भृगु ऋषि हैं, बहुत ही महान और प्रसिद्ध ऋषि हैं। तो वे महर्षि थे और उनकी प्रिय पत्नी पुलोमा थी। वे दुर्वासा, नारद तथा अन्यों की भांति अंतरिक्ष में विचरण कर सकते थे और ब्रह्मांड के सारे लोकों में विचरने जाया करते थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व उन्होंने युद्ध रोकने का प्रयास किया था। कभी उन्होंने भारद्वाज मुनि को खगोल शास्त्र की शिक्षा दी थी और वे महान ज्योतिष शास्त्र वृहद भृगु संहिता के लेखक थे। उन्होंने बताया कि किस प्रकार आकाश से वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी उत्पन्न होते हैं। बहुत ही एक्सपर्ट थे हर सारी विद्याओं में। उन्होंने बताया कि उदर में वायु किस प्रकार कार्य करती है और आंतों को विकसित करती है। महान दार्शनिक के रूप में उन्होंने जीव की शाश्वतता को तर्क से स्थापित किया। महाभारत में ये सब आएगा। वे महान नृतत्व शास्त्री थे। उन्होंने बहुत काल पूर्व विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वे वर्णाश्रम व्यवस्था के वैज्ञानिक प्रतिपादकों में से एक थे। उन्होंने क्षत्रिय राजा वीतहव्य को ब्राह्मण बनाया था। तो ये जो भृगु मुनि थे वो बहुत ही प्रसिद्ध मुनि थे, हर किधर जा सकते थे। जब एक बार सरस्वती नदी के किनारे सारे ब्राह्मण और सारे ऋषि इकट्ठे हुए थे और उनके अंदर एक झगड़ा खड़ा हो गया था कि सबसे महान कौन है, भगवान कौन है, तो फिर ऐसे करते 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 तीन के नाम आए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। बोला यही तीनों महान हैं, लेकिन इनमें से भी एक को यदि चुनाव करना था तो फिर सबने भृगु ऋषि को यह चॉइस किया कि आप क्योंकि हर जगह जा सकते हो, आपके अंदर संयम है, आप जाके तीनों इन महादेवों की परीक्षा लेके आइए। तो फिर जैसे कथा आप सबको पता है, पहले वो शिव जी के पास गए, सॉरी पहले ब्रह्मा जी के पास गए, क्योंकि ब्रह्मा जी उनके पिताजी थे, नमस्कार नहीं किया। सिर्फ शिष्टाचार से भी यदि उनका अपराध किया तो भी ब्रह्मा जी को क्रोधित हो गए। उसके बाद शिव जी के पास गए, शिव जी ने जब उनको आलिंगन करने के लिए आगे आए तो दूर से ही बोला, छिछी छिछी तुम दूर रहो मुझसे, कभी ना आया है तुमने, सारा दिन शमशान की भस्म लगाते हो, हड्डियों की मुंडमाला पहनते हो, मेरे करीब आने से पहले तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ऐसा बोला। शिवजी तो त्रिशूल लेके उसके पीछे घूम भागने लगे कि अभी इसका वध करके बताता हूँ कौन अपवित्र है। और उसके बाद जब वो भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। ये भगवान विष्णु का स्टाइल ऐसा, सदैव विश्राम की मुद्रा में होते हैं, सारे कार्य करते हैं, पूरे संसार का पालन करते हैं और सदैव विश्राम करते हैं ना। हम लोगों को अपने घर का पालन करना पड़ता है। आज का पुरुष सुबह से लेकर रात तक कितनी मेहनत करता है, तब कहीं जाकर एक घर, और आजकल तो फैमिली प्लानिंग की वजह से बच्चे भी एक या दो हैं, फिर भी उस घर के व्यक्तियों को पूरा करने के लिए, उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पूरा दिन मेहनत करनी पड़ती। भगवान सारा दिन विश्राम से नेत्र मूंद कर मंद मंद मुस्का रहे होते हैं, पत्नी उनके चरण चाप रही होती है और पूरे संसार का पालन कर रही होते हैं भगवान। तो आते ही भृगु मुनि ने जोर से उनकी छाती पर लात मार दी और इतना जोर से कि उनका पांव छप गया भगवान की छाती पर, और कहने लगे, इतने आलसी क्यों हो आप, जब देखो सोते रहते हो, जब देखो सोते रहते हो। इतना जोर से आके बोला तब विष्णु भगवान के नेत्र खुले और फिर उनको वो दुख होने लगा। उनके वो क्या कह रहे हैं वो तो सुना नहीं, अपने आसन पे उनको बिठाया और उनके चरणों की सेवा करने लगे, उनके चरणों को सहलाने लगे कि बहुत कष्ट हुआ होगा। मुनिवर, मुझे पहले पता होता आप आ रहे हो तो मैं खड़े होकर आपका स्वागत करता था, परंतु आपको मेरे कारण बहुत कष्ट हुआ क्योंकि मेरी छाती बहुत कठोर है। आपका जब चरण इतना कोमल है, मेरी छाती पे लगा होगा तो बहुत आपको कष्ट हुआ होगा। जब तब ये उस समय स्थापित किया भृगु मुनि ने कि वास्तव में यदि कोई भगवान है तो भगवान नारायण, भगवान विष्णु। तो यहाँ पर विशिष्ट मुनि के विषय में हमने अभी पढ़ा कि वो बहुत ही प्रसिद्ध ब्राह्मण है। उसके बाद पराशर मुनि, पराशर मुनि के विषय में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ये विशिष्ट मुनि के पौत्र थे, पौत्र तथा वेदव्यास जी के पिता थे। पराशर मुनि वेदव्यास जी के पिता, ये महर्षि शक्ति के पुत्र थे और इनकी माता का नाम अदृश्यति था। जब वे पैदा हुए थे तो उनकी माता अभी केवल 12 वर्ष की थी और माता के गर्भ में उन्होंने वेद सीखे थे। ये वेद व्यास जी के पिता थे और वेद व्यास जी के पिता ने वेद सारे गर्भ में ही सीख लिए थे। ये फिर वेद व्यास जी को सिखाए थे, फिर वेद व्यास जी ने सारे वेदों का संकलन किया था और उनको लिपिबद्ध किया था, उनको लिखा था। और ये जो पराशर मुनि है उनके पिता महर्षि शक्ति, उनका वध कलमाशपाद नामक असुर ने किया था। अतएव इसका बदला लेने के लिए उन्होंने संपूर्ण संसार को विनष्ट करना चाहा। वो चाहते थे और वो कर सकते थे, किंतु उनके पितामह विशिष्ट मुनि ने उन्हें रोका, क्योंकि वो उनके दादा थे तो उनको बोला ऐसे नहीं करो, संसार का विनाश नहीं करो। तब उन्होंने राक्षस वध यज्ञ संपन्न किया कि सारे राक्षसों का मैं विनाश कर लूंगा, लेकिन महर्षि पुलस्त ने उन्हें रोक दिया। तो सत्यवती से आसक्त होने पर उन्होंने व्यासदेव जी को प्राप्त किया था। तो वास्तव में व्यासदेव जी का संसार में आना था और ये भगवान की व्यवस्था थी कि सत्यवती और पराशर मुनि के संबंध से वेद व्यास जी का यहाँ संसार में उनके उत्पन्न हुए। पहले सत्यवती जो थी वो उनके शरीर से मछली की गंध आती थी तो इसको सब लोग मत्स्य गंधा कहते थे। तो पराशर मुनि से जब उनकी भेंट हुई तो इन्होंने कहा कि मुझे तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो उसने कहा कि मेरे शरीर से मछली की गंध आती स्मेल आती है, तो आप मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे शरीर से खुशबू आने लगे, बहुत अच्छी सुगंध आने लगे। तो महर्षि पराशर ने उनको ये आशीर्वाद दिया था कि तुम यहाँ से गुजरोगी उससे मीलों दूर तक मतलब सुगंध, जो पुष्पों की सुगंध आने लगेगी। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सत्यवती से आसक्त होने पर उन्हें वेद व्यास जी की प्राप्ति हुई और सत्यवती बाद में महाराज शांतनु की पत्नी बनी। पराशर मुनि के आशीर्वाद से ही सत्यवती मीलों तक सुगंध फैलाती थी। वे भीष्म की मृत्यु के समय भी उपस्थित थे। कौन? पराशर मुनि। वे महाराज जनक के गुरु थे और शिवजी के परम भक्त थे। वे अनेक वैदिक शास्त्रों तथा शास्त्रीय निर्देशक के कृतिकार थे, यानी कि बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि थे, वेदव्यास जी के पिता थे। और यहाँ पर आए क्यों? कथा सुनने के लिए। कथा का कितना महत्व है। उसके बाद है गादी सुत या विश्वामित्र। तो विश्वामित्र के विषय में बता रहे श्री प्रभुपाद जी कि ये तपस्या तथा योग शक्ति के महर्षि थे। ये गादी सुत के नाम से विख्यात थे क्योंकि इनके पिता गादी कान्य कुब्ज प्रात यानी उत्तर देश के अंग के शक्तिशाली राजा थे। यद्यपि ये जन्म से क्षत्रिय थे लेकिन अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों के बल पर उसी शरीर से ब्राह्मण बने थे। उन्होंने विशिष्ट मुनि से झगड़ा मोल लिया था जब वे क्षत्रिय राजा थे। मतंग मुनि के सहयोग से उन्होंने एक महान यज्ञ किया, इस प्रकार ये विशिष्ट के पुत्रों को हरा सके। सारे पुत्र जो विशिष्ट मुनि के थे उनको हराया था। ये महान योगी बने किंतु इंद्रियों को वश में ना रख सके। वो बहुत गहरी तपस्या कर रहे थे और इंद्र जो देवराज इंद्र है वो सोच रहे थे कि मैं इसकी तपस्या का खंडन करूंगा, क्योंकि यदि इसकी तपस्या खंड नहीं हुई तो ये स्वर्ग पर आक्रमण करेगा। तो फिर उन्होंने मेनका को भेजा था उसकी तपस्या का खंडन करने के लिए, और मेनका के साथ उन्होंने विवाह किया था जिससे उनको एक पुत्री हुई थी जिसका नाम था शकुंतला, और शकुंतला का विवाह हुआ था महाराजा भरत के साथ। तो ये वो महाराजा भरत नहीं क्षमा कीजिए शकुंतला का विवाह हुआ था दुष्यंत महाराज के साथ, और दुष्यंत महाराज का जो पुत्र था वो महाराजा भरत, जिसके नाम से भारतवर्ष बना था। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि उन्हें शकुंतला का पिता बनना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो अपनी काम वासना को जीत नहीं सके थे। तो जो विश्व इतिहास की परम सुंदरी शकुंतला, एक बार जब वे क्षत्रिय राजा थे तो वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए जहाँ इनका भव्य स्वागत हुआ। विश्वामित्र वशिष्ठ से नंदिनी नामक गाय चाहते थे किंतु मुनि ने देने से इनकार कर दिया। तब विश्वामित्र ने गाय चुरा ली और मुनि तथा राजा के बीच में युद्ध छिड़ा। विश्वामित्र वशिष्ठ की आध्यात्मिक शक्ति से परास्त हो गए। अब जब वो उन्होंने देखा कि वशिष्ठ मुनि के पास ब्राह्मण तेज इतना ज्यादा है, आध्यात्मिक शक्ति इतनी ज्यादा है कि वो क्षत्रिय को भी हरा सकता है, अतएव राजा ने ब्राह्मण बनने का निश्चय किया। ब्राह्मण बनने के पूर्व उन्होंने कौशिक नदी के तट पर कठिन तपस्या की, और बहुत कठिन तपस्या की थी, और वहीं पर उन्होंने गायत्री मंत्र को भी विकसित किया था, प्रकाशित किया था। ये उन व्यक्तियों में से थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध को रोकना चाहा था। तो ये इसके विश्वामित्र के विषय में, गांधी सूत्र के विषय में। उसके बाद अंगिरा ऋषि के विषय में बता रहे श्री प्रभुपाद जी कि ये ब्राह्मण के छह मानस पुत्र, ब्रह्मा के छह मानस पुत्रों में से एक थे तथा स्वर्ग के देवताओं के परम विद्वान पुरोहित बृहस्पति के पिता थे। ये ब्रह्मा के वीर्य से उत्पन्न हुए थे जिसे उन्होंने अग्नि के एक सुलगते हुए अंगारे को दिया था। अतथ्य तथा संवर्त उनके पुत्र थे। कहा जाता है कि वे आज भी गंगा के तट पर अलोक नंदा नामक स्थान पर भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं और तपस्या कर रहे हैं। कौन? अंगिरा ऋषि। उसके बाद है परशुराम। देखें श्रीमद् भागवतम 1.9.3 नंबर 4.19 वहां पर श्री रूपा जी ने परशुराम जी या रेणु का सूत्र के विषय में बताया है कि ये महर्षि जमदग्नि तथा श्रीमती रेणुका के पुत्र थे। वे रेणुका सूत्र भी कहलाते हैं। वे ईश्वर के शक्तिशाली अवतार थे और उन्होंने क्षत्रिय वंश का 21 बार मैंने परशुराम के विषय हाँ परशुराम ने 21 बार संहार किया था। उन्होंने क्षत्रिय के रथ से अपने पूर्वजों की आत्माओं को प्रसन्न किया था। बाद में उन्होंने महेंद्र पर्वत पर घोर तपस्या की थी। उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को क्षत्रियों से छीनकर कश्यप मुनि को दान में दे दिया था। परशुराम ने द्रोणाचार्य को धनुर्वेद की शिक्षा दी थी, शिक्षा प्रदान की थी, क्योंकि वह ब्राह्मण था। वे महाराज युधिष्ठिर के राजतिलक के समय उपस्थित थे और अन्य महान ऋषियों के साथ इस उत्सव में भाग लिया था। परशुराम की आयु इतनी अधिक थी कि वे विभिन्न युगों में राम तथा कृष्ण दोनों से मिले थे। उन्होंने राम से युद्ध किया था लेकिन कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार किया था। उन्होंने जब अर्जुन को कृष्ण के साथ देखा तो इसकी प्रशंसा भी की थी। जब भीष्म ने विवाह की इच्छुक अम्बा से विवाह करने से इनकार कर दिया था तो अम्बा परशुराम से मिली थी और इसकी प्रार्थना पर उन्होंने भीष्म देव से उसे पत्नी स्वरूप में स्वीकार करने के लिए कहा था। अपना गुरु होते हुए भी भीष्म ने उनकी बात नहीं मानी थी, अतः परशुराम ने उनसे युद्ध किया था। दोनों में घमासान युद्ध हुआ था और अंत में परशुराम ने भीष्म को विश्व का सबसे बड़ा योद्धा का वरदान दिया था। तो यहाँ पर हमने परशुराम जी के विषय में पढ़ा। आगे है अतथ्य। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि महर्षि अंगिरा के तीन पुत्रों में से एक था, एक तथा महाराज मानधाता के गुरु थे उन्होंने सोम यानी चंद्रमा की पुत्री भद्रा से विवाह किया था जब वरुण ने उनकी पत्नी भद्रा का अपहरण कर लिया। तो जल देवता वरुण के अपराध का बदला लेने के लिए ये संसार भर का पानी पी गए थे। कौन? आतथ्य। ये वरुण देव के साथ उन्होंने झगड़ा किया था क्योंकि वरुण देव इनकी पत्नी जो थी वो बहुत ज्यादा सुंदर थी, वो चंद्रमा की पुत्री थी भद्रा। तो फिर उनको देखकर वरुण देव जो है ना उनका अपहरण किया था, तो फिर इनसे बदला लेने के लिए सारा जल पी लिया था। आगे मेधातिथि। प्राचीन काल के वृद्ध मुनि राजा इंद्रदेव के सभासद उनके पुत्र कण्व मुनि थे जिन्होंने वन में शकुंतला का पालन किया था, क्योंकि शकुंतला को श्राप मिला था कि उनका पति जो है वो आपको एक क्या हुआ था शकुंतला एक ब्राह्मण आया था और वो उससे पूछ रहा था, कुछ बात कर रहा था या पानी मांग रहा था, तो शकुंतला क्योंकि दुष्यंत के ख्याल में ही खोई हुई थी तो उसको बोला कि तुम्हारा पति तुम्हें भूल जाएगा, जिसके ख्याल में तुम अभी इतना खो गई हो वो तुम्हारा पति तुम्हें भूल जाएगा। और दुष्यंत जो है वो शकुंतला को भूल गया था और फिर वो गर्भवती थी, उनके गर्भ में महाराजा भरत थे, तो फिर जो कण्व मुनि थे उनके आश्रम में उनका पालन हुआ था। और वहां पर इतने उस जिस जंगल में उनका आश्रम था वहां पर जितने भी खूंखार जानवर थे ना वो सारे महाराजा भरत के मित्र थे। मतलब वो जैसे हमारे बच्चे होते हैं छोटे, खेलते हैं हाथी के साथ, शेर के साथ, खिलौने के साथ खेलते ना, वो असली जो एनिमल्स थे ना इतने बहुत ज्यादा खौफनाक एनिमल होते थे, ये पशु होते थे, उनके साथ खेलते थे ये। तो यहाँ पर श्री रूपा जी बता रहे हैं कि मेधा तिथि के विषय में बता रहे हैं कि उनके पुत्र कर्ण मुनि ने जिन्होंने वन में शकुंतला का पालन किया था वानपरस आश्रम का पालन करते हुए उन्होंने स्वर्ग की प्राप्ति की थी। आगे है देवल। ये देवल ऋषि वो हैं जिनके विषय में अर्जुन कहते हैं भगवान को, असितो देवलो व्यास। ये देवल जो है नारद मुनि तथा व्यास देव की भांति महान विशेषज्ञ हैं। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया था तो श्रीमद् भगवद गीता में उल्लिखित महापुरुषों की सूची में इनका नाम लिखा था। ये कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद महाराज युधिष्ठिर से मिले थे। ये पांडव परिवार के पुरोहित धौम्य के बड़े भाई थे। क्षत्रिय की भांति उन्होंने अपनी पुत्री को स्वयंवर सभा में अपना पति स्वयं चुनने की अनुमति दे दी। वैसे ब्राह्मणों में ऐसे नहीं होता है कि स्वयंवर सभा नहीं होती, लेकिन इनके जो पुत्री थी उनकी स्वयंवर सभा हुई थी और उस उत्सव में ऋषियों के सभी कुमार पुत्रों को आमंत्रित किया था। कुछ लोगों के अनुसार ये असित देवल नहीं है, कुछ लोग कुछ बताते हैं, श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं। आगे बोल रहे हैं भारद्वाज, लेकिन श्रीमद् भागवतम 1.9.6 इनके विषय में श्री प्रभुपाद जी 418 पेज नंबर भी बताते हैं कि ये महान सप्तऋषियों में से एक थे और अर्जुन के जन्मोत्सव के समय उपस्थित थे। इस शक्तिशाली ऋषि ने कभी गंगा के तट पर कठिन तपस्या की थी और इनका आश्रम आज भी प्रयाग धाम में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि जब ये ऋषि गंगा में स्नान कर रहे थे तो स्वर्ग की परम सुंदरी अप्सरा धृताची ने इसे इनकी भेंट हुई थी। इससे इनका वीर्य सकलित हो गया था जिससे एक मिट्टी के बर्तन में रख दिया गया था, जिससे द्रोण उत्पन्न हुए थे, द्रोणाचार्य। इस तरह से द्रोणाचार्य भारद्वाज मुनि के पुत्र थे। कुछ लोग द्रोण के पिता भरद्वाज को इन महर्षि भारद्वाज से भिन्न मानते हैं। ये ब्रह्मा के महान भक्त थे। ये एक बार द्रोणाचार्य के पास भी गए थे और उन्होंने उनसे कुरुक्षेत्र युद्ध बंद करने के लिए आग्रह किया था। तो इसके बाद भारद्वाज मुनि के बाद भारद्वाजो गौतम पेपलाद। गौतम के विषय में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये विश्व के सात महर्षियों में से एक थे। इनके एक पुत्र का नाम शरद्वान गौतम था। आज के गौतम गोत्र के लोग या तो इनके वंशज हैं या इनकी शिष्य परंपरा के हैं। जो ब्राह्मण अपना गौतम गोत्र बताते हैं वे इनके वंशज हैं, और जितने गौतम गोत्र वाले क्षत्रिय तथा वैश्य हैं वे इनके शिष्य परंपरा से हैं। वे विख्यात अहल्या के पति थे। ये याद आ गया होगा ना आपको, अहल्या के गौतम ऋषि जो पति थे जिनको जिन्होंने अहल्या को श्राप दिया था, किंतु भगवान रामचंद्र द्वारा इसका उद्धार हुआ था, है ना। अहल्या इंद्रदेव के द्वारा छेड़े जाने पर पत्थर बन गई थी, और श्री राम जी ने जब उनके चरण स्पर्श कराया था तो उनका उद्धार हुआ था। और उसके बाद गौतम कुरुक्षेत्र युद्ध के वीरों में से कृपाचार्य के पितामह थे। आगे है मैत्रेय मुनि के विषय में बताने श्री प्रभुपाद जी कि ये प्राचीन ऋषि हैं, ये विदुर के गुरु थे और धर्माचार्य थे। उन्होंने धृतराष्ट्र को सलाह दी थी कि वे पांडवों से मधुर संबंध बनाए रखें, किंतु दुर्योधन राजी नहीं हुआ था तो उन्होंने उसे शाप दे दिया था। ये व्यास देव से मिले और उनके साथ उन्होंने धार्मिक चर्चाएं की थी। तो मैत्रेय मुनि ने दुर्योधन को शाप दे दिया था कि यदि पांडवों के साथ सलाह नहीं की तो फिर तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। आगे सूत गोस्वामी कहते हैं श्लोक नंबर 11 में, मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षि वर्या राजर्षि वर्या अरुणादयश्च नानाश्रेय प्रवरान् समेतान् अभ्यर्च्य राजा शिरसा वन्दे। अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षि वर्या राजर्षि वर्या अरुणादयश्च नानाश्रेय प्रवरान् समेतान् अभ्यर्च्य राजा शिरसा वन्दे। अन्ये च मतलब ये ही खाली नहीं आए थे, अन्ये अनेक दूसरे भी आए थे। च कौन थे वो? देवर्षि यानी देवताओं के जो ऋषि हैं वो सब आए थे। देवर्षि बहुत सारे देवर्षि मिलकर आए थे। ब्रह्मर्षि यानी ऋषि तुल्य ब्राह्मण थे, और वर्या मतलब देवताओं के ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ सारे थब आए थे। ब्रह्म ऋषियों में जो वर्या मतलब जो सर्वश्रेष्ठ, राजर्षि वर्या यानी राजर्षियों में भी जो सर्वश्रेष्ठ है। अरुणादय यानी राजर्षियों की विशिष्ट श्रेणी वो सब आए थे। च नाना और भी अनेक आशेय परवान का मतलब होता है ऋषि वंशों में सबसे श्रेष्ठ। समेतान एक साथ समूहित बहुत सारे एक साथ, कुछ कहाँ से आ रहे हैं, कुछ कहाँ से आ रहे हैं, कुछ कहाँ से आ रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि देवताओं के ऋषि ब्रह्म ऋषि सब सब जितने भी ऋषियों के वंशज थे वो सब समूह बनकर मतलब झुंड के झुंड आ रहे थे। अभ्यर्च्य तो फिर अभ्यर्च्य राजा शिरसा वंदे। राजा ने जो सम्राट राजा परीक्षित यहाँ पर आए, शिरसा यानी अपने सिर को भूमि पर झुकाकर उन सबको प्रणाम किया, सबका स्वागत किया, सबको प्रणाम किया। महाराजा परीक्षित जो थे वो इन सब ऋषियों को देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए कि अवश्य अब मेरा परलोक जो है वो सुधरने वाला है कि अंतिम समय में मुझे इन सब के दर्शन प्राप्त हुए हैं। तो यह अनुवाद देखिए, इनके अतिरिक्त यहाँ अन्य अनेक देवर्षि राजा तथा विभिन्न मुनियों के वंशज विशिष्ट राजा आए थे जिन्होंने अरुणादय कहा गया है। जब वे सब उनको जिन्हें अरुणादय कहा गया है जब वे सब सम्राट परीक्षित से मिलने के लिए एकत्रित हुए तो राजा ने सबको शिरसा प्रणाम करते हुए समुचित ढंग से स्वागत किया। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा, श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं गुरुजनों को आदर करने के लिए सिर को भूमि तक झुकाने की प्रथा अत्यंत उत्तम शिष्टाचार है। जब कोई गुरुजन आए तो हमें उनको झुक कर प्रणाम, शिरसा वंदे शब्द लिखा यहाँ पर सूत गोस्वामी ने कि मस्तक को जमीन पर झुका कर उन्होंने प्रणाम किया, जिससे अतिथि अपने को अत्यधिक सम्मानित समझते हैं। यहाँ तक कि उच्च कोटि के अपराधी के ऐसा करने पर उसे क्षमा कर दिया जाता है। और महाराज परीक्षित तो समस्त ऋषियों तथा राजाओं द्वारा अत्यधिक सम्मानित थे, उन्होंने इन समस्त महापुरुषों का विनीत भाव से स्वागत किया, जिससे वे अपने अपराधों के लिए क्षमा किए जा सके। सामान्यतः जीवन की अंतिम अवस्था में यह विनीत विधि प्रत्येक संवेदनशील व्यक्ति द्वारा अपनाई जाती है, जिससे प्रायाण के पूर्व उसे क्षमा किया जा सके। इस प्रकार महाराज परीक्षित ने भगवत धाम वापस जाने के लिए सबों की शुभकामनाएं प्राप्त की। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि महाराज परीक्षित उनको नमन कर रहे हैं, तो सबने हृदय से उनको आशीर्वाद दिया कि वास्तव में आप तो अपराधी हो भी नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको आशीर्वाद देते हैं ताकि आप भगवत धाम वापिस जा सकें, आपके लिए आपका जो आगे का सफर है वो मंगलमय हो। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि अभी भागवत कथा शुरू होने वाली है। सारे ऋषि जो यहाँ पर आए हैं, जहाँ आगे लिखा है कि द्वैपायनो भगवान नारदश्च, दसवें श्लोक के आखिर में लिखा है द्वैपायन यानी साक्षात वेद व्यास जी, जिन्होंने सुखदेव गोस्वामी को भागवतम कथा सुनाई थी, वो भी यहाँ पर आए थे। सुखदेव गोस्वामी ने वेद व्यास जी से भागवत सीखी थी, लेकिन वो अपने पुत्र के मुख से सुनना चाहते थे। वास्तव में एक भक्त का यही लक्षण है कि वो कथा श्रवण करना चाहता है, नहीं देखता कि कथा सुनाने वाला योग्य है नहीं। वो यदि वो कथा सुना रहा है, उसको एज इट इज बता रहा है, तो यही तो योग्यता है। फिर वो आयु में कितना अलग है, अभी देखेंगे हम। सुखदेव गोस्वामी तो 12 वर्ष के छोटे से पुत्र हैं, छोटे से आयु है उनकी, लेकिन यहाँ पर वेद व्यास जी आए हैं। द्वैपायनो भगवान नारदश्च, वो नारद मुनि जो कि साक्षात वेद व्यास जी को प्रेरणा देने के लिए आए थे, वेद व्यास जी को जिन्होंने भागवत के लिए प्रेरणा दी, जो वेद व्यास जी के गुरु हैं, वो भी यहाँ पर कथा सुनने के लिए आए। तो हम देखते हैं कितना महत्व है कथा का। यहाँ पर जो सारे विश्व के ऋषि आए, वो सारे सिलेक्टेड ऋषि हैं, अपने सारे शिष्यों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत सारे ऋषि यहाँ पर एक और सारे जैतेंद्रिया हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप महाराज परीक्षित सोच रहे हैं अभी इतने सारे ऋषि आ गए हैं, अभी इनके लिए खाने पीने का व्यवस्था करनी पड़ेगी, सबके लिए बंदोबस्त करना पड़ेगा, अभी तो मैं मरने वाला हूँ और यहाँ पर नहीं। सब जो आए सब जितेंद्रिय हैं, भूख प्यास का कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको। यहाँ पर ये सब ऋषिगण आए हैं, एकत्रित हुए, उनका केवल एक ही उद्देश्य है कि उनको भागवत कथा श्रवण करनी है। वो सारे अपने आश्रमों से, अपने अपने कर्तव्यों से विमुख होकर यहाँ पर आए हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जीव का कर्तव्य है भगवत कथा सुनना। भगवत कथा से सुनने से अधिक और कुछ भी कार्य नहीं होता है। वो मुनिगण, वो ऋषिगण, वो ब्रह्म ऋषि जिन्होंने सारे कार्य छोड़ दिए, वो भी भगवत कथा का कभी भी त्याग नहीं करते। तो हमें अवश्य भगवत कथा श्रवण करने के लिए हृदय के अंदर उत्सुक होना चाहिए, क्योंकि इसी से जीव का कल्याण होगा। आप सब कृपया मेरे लिए अवश्य प्रार्थना कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।